श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला। श्रोताओं हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलो जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महा, हे प्रभु यीशु महा। लहर इस दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो कर तेरा प्रचार, कर तेरा प्रचार।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। आज के इस बाइबल अध्ययन में आप सबों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं और अपने नए मित्रों को भी अपने साथ में रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो एक परिवार की कहानी है और जिसके माध्यम से परमेश्वर हमें अर्थात इसराइलियों को भी सिखाना चाहता है। पिछले अध्ययन में हमने अध्याय एक का अध्ययन किया और आज हम अपने अध्ययन को होशे नबी की पुस्तक उसके अध्याय दो से अध्ययन को आरंभ करेंगे। इस अध्याय का विषय है गोमेर का विश्वासघात, इसराइल का विश्वासघात और परमेश्वर की विश्वास योग्यता। इस अध्याय में इसराइल के लिए पांचवी अति उत्तम भविष्यवाणी है। पिछले अध्याय के अंतिम दो पदों में हमने देखा था, पहला, इसराइल की जनसंख्या में महान वृद्धि होगी, दूसरा, इसराइल में परमेश्वर की ओर महान मन फिराव होगा, तीसरा, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य एक हो जाएंगे और इसराइल के 12 गोत्र एक राष्ट्र होंगे, चौथा, उनका एक प्रधान प्रभु यीशु होगा, और पांचवा है अध्याय दो उसके एक पद में। आइए हम पढ़ें। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो। यहां पर अम्मी का अर्थ है मेरे लोग, रुहामा का अर्थ है दया। परमेश्वर कहता है कि वह दिन आने वाला है जब वह कहेगा, तुम मेरे लोग हो। अध्याय 3 में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इसराइल से नाता नहीं तोड़ा है। हमारे लिए इस सत्य को ग्रहण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे जो कहते हैं कि परमेश्वर ने इसराइल से नाता तोड़ दिया है, वे या तो शब्दों का जाल बुनते हैं या पुराने नियम को निराधार ठहराते हैं। यदि आपको पुराने नियम के शब्दार्थिक अभिप्राय से वंचित होने की स्वतंत्रता है, तो आपको नए नियम के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। क्या आप रोमियो की पत्री और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद को भी उसके वास्तविक अर्थ से वंचित करना चाहेंगे? आप नए नियम के साथ ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पुराने नियम के साथ ऐसा क्यों करते हैं? होशे नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, अपनी माता से विवाद करो, विवाद क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूं। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे। मेरे मित्रों, यहां पर शब्द विवाद, विवाद में झगड़े का भाव है, क्योंकि इसराइल गोमेर के समान विश्वासघाती था। परमेश्वर गोमेर का पाप इसराइल पर थोप रहा था। होशे ने एक ऐसी स्त्री को पत्नी होने के लिए अपनाया था जो विवाह के कुछ समय बाद 3 संतान उत्पन्न करके पुनः वेश्यावृत्ति में चली गई, परंतु होशे उससे प्रेम करता रहा। सबसे बड़ा पाप हत्या, चोरी, झूठ या परिस्थितिवश व्यभिचार भी नहीं है, परंतु धर्मशास्त्र के अनुसार प्रेमी से विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। मेरे प्रियो, इस संदर्भ में विश्वासी का सबसे बड़ा पाप क्या है? कुछ लोगों के विचार में हत्या, झूठ या लालसा है, परंतु सच तो यह है कि आपके उद्धारक प्रेमी परमेश्वर से विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। परमेश्वर कहता है, अपनी माता से विवाद करो, विवाद क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और ना मैं उसका पति हूं। उससे कह कि वह अपने छिनालपन को अलग करे। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं इसराइल ने परमेश्वर के प्रेम से विश्वासघात किया, परंतु परमेश्वर ने उसे त्याग नहीं दिया। परंतु हां, यदि वे मन न फिराएं और परमेश्वर के पास नहीं लौटें, तो वह उन्हें दंड देगा, उन्हें तितर बितर कर देगा और उन पर दया नहीं करेगा। होशे नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 3 पद में लिखा है, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। यदि वह मन ना फिराए तो परमेश्वर उसको दंड देगा। किसे? इसराइल को। होशे यर्मिया के समान दयालु प्रवृत्ति का नहीं था। मेरे विचार में उसने कहा होगा, यदि वह बदले को तैयार नहीं तो मैं चाहता हूं कि उसे पत्थरवाह किया जाए, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। होशे की पुस्तक 2 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा। परमेश्वर कहता है कि देश का पाप मनुष्य का व्यक्तिगत पाप है, क्योंकि देश नागरिकों से ही बना होता है। वे अवैध संतान हैं। परमेश्वर उन्हें दंड देगा। इस समय संपूर्ण राष्ट्र मूर्ति पूजा में लीन था, और परमेश्वर कहता है कि इसराइल की संतान पर भी ध्यान नहीं करेगा। जी हाँ, क्योंकि वे व्यभिचार की संतान हैं। होशे 2 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी ऊन सन तेल और मध देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। मेरे प्रियो, वह पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रही थी। इससे प्रतीत होता है कि होशे धनवान मनुष्य नहीं था, और क्योंकि वह गोमेर को सुख विलास की वस्तुएं नहीं दे पाता था, इसलिए वह व्यभिचार की कमाई खाती थी। इसी प्रकार इसराइल भी मूर्ति पूजा को सुख सुविधा का श्रेय देता था। मैं अपने प्रेमियों के पीछे जाऊंगी क्योंकि उन्हीं से मुझे भोजन पानी मिलता है। यही आवश्यकता की वस्तुएं हैं, रोटी पानी ऊन सन तेल और मद आदि। ये वस्तुएं उस समय सुख विलास की वस्तुएं थी, परंतु सच तो यह है कि देने वाला तो सदा ही परमेश्वर था, जो उनसे प्रेम करता था। मेरे मित्रों, मानव जाति और विशेष करके अंगीकार करने वाले विश्वासियों में भी परमेश्वर की आशीषों के प्रति कृतज्ञता स्पष्ट प्रकट होती है। आज आप महंगाई के लिए शिकायत करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने खाना खाया है? क्या आपके पास पहनने को कपड़े हैं? आपके पास आराम की कुछ वस्तुएं भी होंगी। यह सब कहां से आया? आप कहेंगे, मैंने तो मेहनत से कमाया है। परंतु सच तो यह है कि परमेश्वर ने आपको दिया है। यदि आपने बुद्धि से कमाया है, तो आपको बुद्धि भी परमेश्वर ही ने दिया है। उसी ने आपको स्वास्थ्य और शारीरिक बल भी दिया है। उसी ने आपको नौकरी दी है, और उसी ने तो इस पृथ्वी को भोजन, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और सूरज के प्रकाश से परिपूर्ण किया है। आप फिर भी कृतज्ञ नहीं है। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? यह सच है कि आज घोर अपराध हो रहे हैं, चोरी, झूठ, हत्या आदि। परंतु सबसे बड़ा अपराध तो परमेश्वर की संतान कर रही है, वे कृतज्ञ नहीं है। मैं जानता हूं कि यह एक स्वीकार्य बात नहीं है, परंतु होशे की पुस्तक में इसराइल के लिए यही लिखा हुआ है। होशे 2 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह ना पा सकेगी। हमारी हर एक समस्या के पीछे एक समस्या है, एक महान समस्या कि हम परमेश्वर को पहचानने से इनकार करते हैं। यदि हम सेना की जगह प्रचारकों का दल भेजें, तो युद्ध की आवश्यकता नहीं होगी, लोग मरेंगे नहीं, युद्ध बंदी कष्ट नहीं उठाएंगे। होशे 2 अध्याय के 7 पद में हम आगे पढ़ते हैं, वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें ना पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी ना पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। मेरे मित्रों, वह दिन भी आता है जब गोमेर की सुंदरता समाप्त हो जाती है और उसके प्रेमी उसमें रुचि नहीं लेते, वह परित्यक्त है। इसी प्रकार इसराइल भी जब कहीं का नहीं रहा तो कहने लगा, हम परमेश्वर के पास लौट चलें। होशे 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा हुआ है, वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाखमधु और तेल मैं ही उसे देता था, और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाख मधु के होने के समय में अपने नए दाख मधु को हर लूंगा और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढापती हैं मैं छीन लूंगा। परमेश्वर कहता है कि वह इसराइल को दंड देगा। आज हमारा समाज कुकर्म और अपराध को स्वीकार करने लगा है। परमेश्वर कहता है कि यह पाप है और पतन का संकेत है। हमारे न्यायाधीन कानून के ज्ञाता हैं, परंतु जानते नहीं कि परमेश्वर देश के कानून पर प्रभुता करता है। होशे की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10-13 पद में लिखा है, अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा न सकेगा। मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है, जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, इन पदों में हम देखते हैं सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर को भूल जाना, जिसे आज भी हम में से कई लोग भूल रहे हैं, धन संपत्ति को अपना ईश्वर बना बैठे हैं। होशे 2 अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा है, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें करूंगा। वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। लिखा है आकोर की तराई अर्थात कष्टों की तराई। यह यहोशू 7 की घटना के संदर्भ में है। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करते समय इसराइल के सामने 3 मुख्य शत्रु थे जिन्हें जीतना उनके लिए अति आवश्यक था और उसके बाद ही यहोशू उस क्षेत्र को विभाजित करके एक एक करके उन्हें जीत पाता। उनका पहला शत्रु था यरीहो। यरीहो संसार का प्रतीक है। परमेश्वर ने यरीहो को उनके अधीन कर दिया। दूसरा कदम था ऐ नगर को जीतना। उन्होंने सोचा था कि ऐ नगर तो यरीहो की तुलना में छोटा है। ऐ नगर देह का प्रतीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि वे शारीरिक शक्ति में अपना मसीही जीवन जी सकते हैं जो सदा ही पराजय है। यहोशू ने ऐ नगर में हार कर एक सबक सीखा। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यरीहो से कोई भी अशुद्ध वस्तु न लेना। वहां एक पुरुष ऐसा था जिसने आज्ञा नहीं मानी और परिणाम स्वरूप वे ऐ नगर में हारे। यहोशू परमेश्वर के सम्मुख मुंह के बल गिरकर गिड़गिड़ाया। परमेश्वर ने उससे कहा कि इसराइल ने पाप किया है और उन्हें विजय पाने से पूर्व शिविर से पाप का निवारण करना होगा। अंत में उन्होंने आकान को पकड़ा और उसे तथा उसकी संपदा को आकोर की तराई में नष्ट करके गाड़ दिया। इसके बाद यहोशू विजयी हुआ। मेरे मित्रों, यदि हम देह के पाप को दूर कर दें तो हम मसीही जीवन में विजयी होंगे। आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। परमेश्वर के कहने का अर्थ है मैं तुम्हें पाप का दंड दूंगा और दंड के बाद तुम्हारे लिए भविष्य में एक महिमामय अद्भुत आशा होगी। वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। मेरे प्रियो, आज इसराइल देश में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यदि इसराइल स्वदेश वास कर रहा है तो यह स्थान शकेम के निकट है जहां यूसुफ दफन किया गया था। यह वह स्थान है जिसके लिए अरब और इसराइल में क्लेश हो रहा है। वहां गीत का गाना नहीं है। अतः यह भविष्यवाणी भविष्य संबंधित है। परमेश्वर उन्हें वहां आशीषित करेगा। होशे 2:16 में लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे इशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी। यह बड़ी रोचक बात है और इसका अर्थ अति प्रिय है। इशी अर्थात मेरा पति, बाली का अर्थ है मेरा स्वामी। यह बाल देवता से संदर्भित है। इससे प्रकट होता है कि इसराइल बाल को परमेश्वर के बराबर रखकर उसकी उपासना करता था। परमेश्वर कहता है कि ऐसा संभव नहीं। एक दिन वे अपने परमेश्वर यहोवा को मेरा पति कहेंगे। पति के संबंध का अभिप्राय है घनिष्ठता और व्यक्तिगत संबंध तथा प्रेम। मानवीय परिवार में यह सबसे बड़ा संबंध है। इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति श्रेष्ठ गीत में पाई जाती है, 6:3 में, मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। मेरे मित्रों, विवाह में ऐसा संबंध एक सुखी परिवार का आधार है। आवश्यक नहीं कि आप पति पत्नी का जीवन जीने के लिए प्रशिक्षण के लिए कहीं जाएं। यदि आप में प्रेम है तो आपके पास सब कुछ है। आप अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं, अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं। आप अपने संतान के साथ एक चित होकर व्यवहार कर सकते हैं। परंतु यदि आप एक दूसरे से प्रेम न करें तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के साथ ऐसे संबंध बनाना अति महान है। आप प्रभु यीशु से कहें, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरा हूं। ऐसे संबंध के विषय में पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 3:21-23 में, मनुष्यों पर कोई घमंड न करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना कह सकते हैं? क्या आप उसके हैं और वह आपका है? यदि वह है तो आपके पास एक भली वस्तु है। इससे अच्छा अन्य कोई संबंध नहीं है। एक दिन इसराइल परमेश्वर से कहेगा, तू मेरा पति है, फिर बाली न कहेगी। जैसा हम देख चुके हैं कि बाली से अभिप्राय है बाल अर्थात मेरा स्वामी। आपको प्रभु यीशु के वचन स्मरण होंगे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती रचित सुसमाचार 7:21-23 में हम इसे पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात तो प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना है, मुंह से उसे प्रभु कहना और उसके लिए काम करने का दावा करना नहीं है। यह सब वही आकर ठहरता है जो प्रभु यीशु गलील सागर पर शमौन पत्रस से पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वह आज आपसे पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? मित्रों, आपका उत्तर क्या होगा? पत्रस ने तो कहा, हां प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। आज प्रभु आपके मुंह से भी सुनना चाहता है कि क्या आप उससे प्रेम करते हैं। आपका जवाब क्या है? क्या आप उसे जवाब देंगे? मेरे मित्रों, आज यहां पर हम इस बात को जान रहे हैं कि परमेश्वर प्रेम करता है और उससे दूर हो जाना एक बहुत बड़ा पाप है। क्यों ना हम फिर से वापस आ जाएं और उस महान परमेश्वर को अपने जीवन में आने दें ताकि वह मुझे नया बना दे। पौलुस कहता है कि जो कोई मसीह में है वह एक नई सृष्टि है। क्या आप नहीं चाहते कि आप उन बुराइयों से, गंदगियों से, पापमय जीवन से बाहर निकलकर एक नए व्यक्ति बन जाएं, एक आदर्श व्यक्ति बन जाएं और परमेश्वर के महिमा के लिए खड़े हो जाएं? मेरे प्रियो, आज आप इस विषय पर निर्णय लें। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।
सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। आवाज गूंज में